लगता है, उसी के अनुमानित आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ता है। कई बार तो इन जानकारियों में काफी अंतर भी होता है।
आवश्यकता इस बात की है कि जहां भी प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं, वहां एक यात्रा की जाए और वस्तुस्थिति का सही विवरण प्राप्त किया जाए।
न केवल उनकी जनगणना को, वरन जिन परिस्थितियों में वे रह रहे हैं उनका जानना और इन भारत पुत्रों के साथ मातृभूमि की स्नेह श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना भी आवश्यक है। वर्तमान साधनों से जो थोड़ी सी जानकारी प्रवासी भारतीयों के बारे में प्राप्त हो सकी है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।
अमेरिका। अमेरिका के हार्वर्ड, कोलंबिया, शिकागो, विस्कोनसिन, कैलिफोर्निया, पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय में संस्कृत की उच्च शिक्षा का प्रबंध है। येल विश्वविद्यालय में विलियम डेविड हिविट ने संस्कृत व्याकरण की जो सुलझी हुई पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, वे न केवल अमेरिका में वरन अन्य देशों में भी बहुत लोकप्रिय हुई हैं।
सन 1970 में अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों की संख्या 2575 थी।
इसके बाद प्रायः 300 के क्रम से वह संख्या हर साल बढ़ती गई।
इनमें से एक तिहाई न्यूयॉर्क नगर के इर्द गिर्द इलाके में काम करते हैं। उनमें से कितनों को ही सरकारी अस्पताल में भी काम मिला हुआ है। सान फ्रांसिस्को से 60 मील दूर पर स्टॉकटन नगर के समीप भारतीयों की एक छोटी बस्ती है, जहां भारतीय मूल के पंजाबी लोग रहते हैं और कृषि करते हैं।
इनका एक गुरुद्वारा भी है।
20वीं सदी के आरंभ में, जब अमेरिका प्रवेश पर किसी देश के लिए प्रतिबंध नहीं था, उन्हीं दिनों ये लोग पंजाब से लगभग 1000 की संख्या में गए थे और वहीं बस गए। इनमें से कृषक लोग इस बस्ती में रहते हैं और शेष अन्य नगरों में अमरीकी नागरिकों की तरह विभिन्न व्यवसाय करते हैं। पश्चिमी अमेरिका में कनाडा और कैलिफोर्निया के अंचलों में कितने ही भारतीय स्थायी रूप से बसे हुए हैं और अब वे वहीं के नागरिक बन गए हैं। इनके पूर्वज इस शताब्दी के आरंभ में कारीगरों के रूप में गए थे।
पीछे उन्होंने कुछ पूंजी जमा कर ली और कृषि फार्म तथा दूसरे व्यवसाय करने लग गए।
इनमें से कितने ही अब सुसंपन्न हैं।
कनाडा।
कनाडा में इन दिनों लगभग 50,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से अधिकांश विभिन्न कार्यों में संलग्न कर्मचारी हैं। कुछ डॉक्टरी, वकालत आदि के पेशों में भी काम करते हैं। इस देश में केवल सुयोग्य और उपयोगी विदेशियों को ही ठोक बजाकर प्रवेश दिया जाता है।
रूस द्वारा जेकोस्लाविया पर जब 1968 में हमला किया गया तो उस समय वहां के लगभग 12,000 निवासी भागकर कनाडा पहुंचे थे। वहां कई गुरुद्वारे और मंदिर हैं।
सिखों ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी को वहां भी सुरक्षित रखा है। कनाडा में अन्यान्य क्षेत्रों में फैले हुए भारतीयों में से अधिकतर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, नजादी हैं। व्यवसाय बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। नज महिलाएं केरल से गई हैं।
छात्र भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं।
अन्य देशों की अपेक्षा कनाडा में देशी विदेशी का भेदभाव बहुत ही कम है। कनाडा में बसे भारतीयों में कितने ही असाधारण धनी भी बन गए हैं।
स्वजीरो कपूर सिंह सिद्धू ने वैंकूवर में $5,00,000 देकर कपूर सिद्धू संस्थान स्थापित किया है। ट्रिनिडाड तथा टोबोगो। ट्रिनिडाड द्वीप दक्षिणी अमरीका के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश उत्तर और पश्चिम देशांतर 61 से 62 के मध्य स्थित है।
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के द्वीपों में इसकी गणना दूसरे नंबर पर है। पहला बड़ा द्वीप जमैका है।
ट्रिनिडाड की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है।
इस नगर की जनसंख्या 70,000 है।
दूसरे नगर हैं सेंट फर्नेडो, प्रिंसेज टाउन, आरिमा, कोवा, सेंट जोसेफ, सांग्रे ग्रेड और टूनापुना।
सन 1845 ईस्वी में भारतीय लोग वहां प्रतिबंधित मजदूरों के रूप में लाए गए थे।
ट्रिनिडाड में प्रायः 4,00,000 भारतीय हैं।
इनमें से अधिकांश गन्ने की खेती में लगे हुए हैं।
कैनोल, विक्टोरिया और पोर्ट ऑफ स्पेन क्षेत्र में भारतीय बस्तियां अधिक हैं।
स्त्रियों की पोशाकें अधिकतर अभी तक विशुद्ध भारतीय हैं। वे साड़ियां पहनती हैं, सिर पर घूंघट निकालती हैं, नाक में नथनी, हाथ पैर में गुदने गुदाना जैसे चिन्हों को देखकर उन्हें सहज ही भारतीय के रूप में पहचाना जा सकता है। छतों पर भारतीय ध्वजा पताका फहराना उन्हें बहुत प्रिय है। कार्तिकी पूर्णिमा को समुद्र स्नान के लिए वे लोग ऐसे ही जाते हैं जैसे सोमवती अमावस्या को भारत में दिखाई पड़ता है। यहाँ के भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा है।
ये लोग भारत को अपनी धर्मभूमि और मातृभूमि मानते हैं।
ट्रिनिडाड के गांवों और शहरों में देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं। यदा कदा हवन पूजन भी होते हैं। पंडित पुजारी भी बहुत हैं, पर उन्हें भी अब हिंदी बोलने की आदत नहीं रही। विधि विधान का निर्देश अंग्रेजी भाषा में करते हैं।
हाँ, मंत्र जरूर शुद्ध अशुद्ध संस्कृत भाषा में बोल लेते हैं।
जब हवन कराना होता है तो मेज पर एक तसला जैसा लोहे का हवन कुंड रखकर बैठ जाते हैं और गोली के रूप में रखी हुई हवन सामग्री को स्वाहाकार के साथ अग्नि में डालते जाते हैं।
ट्रिनिडाड की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन।
यहाँ की मुख्य सड़कों के नाम भारतीय नगरों के नाम पर हैं, जैसे बम्बई स्ट्रीट, मद्रास स्ट्रीट, बंगलो स्ट्रीट, इलाहाबाद स्ट्रीट आदि।
दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि जैसे त्यौहार वहाँ बड़े उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। गीता, रामायण का सारांश वहाँ अंग्रेजी में छपा मिलता है। हिंदी भाषा को एक प्रकार से भूल ही चुके हैं।
रहन सहन और आहार विहार पर पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता की छाप है,
फिर भी भारतीयता पर उन्हें गर्व है और भारतीय संस्कृति को अधिक जानने, समझने एवं अपनाने के इच्छुक हैं। ट्रिनिडाड में हिंदू आबादी 45% और गायना में 65% है। बारवेडीज, ग्रेनेडा और सेंट विंसेंट को मिलाकर 10,000 हिंदू रहते हैं।
बारवेडीज में मात्र 22 सिंधी परिवार हैं।
ट्रिनिडाड और गायना के हिंदू हिंदी नहीं जानते।
धर्म संस्कारों में मंत्र संस्कृत में बोलकर उनकी व्याख्या अंग्रेजी में सुनाई जाती है। ऐसा ही कथा वार्ताओं में भी होता है।
सुरीनामा, दक्षिण अमरीका के उत्तरी छोर पर भूमध्य रेखा के समीप सुरीनाम बना है, जो सूर्य का देश कहलाता है।
यह भारत से कोई 20,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ के मूल निवासी भी अपने को अमर इंडियन कहते हैं।
ब्रिटिश गायना और फ्रेंच गायना के बीच में अवस्थित यह भूभाग पहले डच गायना कहलाता था, अब उसका नाम सुरीनाम है।
इस क्षेत्र में पिछली शताब्दियों में गोरे लोगों का शासन जमता उखड़ता रहा है।
स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड के शासक वहां अधिकार रख चुके हैं।
अंत में वह डच लोगों के हाथ पड़ा। 1972 की जनगणना में सुरीनाम की जनसंख्या 3,84,903 थी। इनमें मूल निवासियों की संख्या मात्र 10% है। ये लोग छोटे कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस क्षेत्र में चीनी भी बसे हुए हैं, पर वे संख्या में थोड़े हैं, मात्र 3%। राज्य भाषा डच 37% जनता के उपयोग में आती है और 32% हिंदी भाषी हैं। शेष अन्य भाषाएं बोलते हैं। जावा मूल के निवासी यहां 16% हैं। सुरीनाम के भारतीय अधिकांश में उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए हैं। उनकी प्रथा परंपराएं अभी भी अपने पूर्वजों जैसी ही हैं। ट्रिनिडाड में 100 और सुरीनाम में 60 पंडित पुरोहित हैं। वे कथावार्ता, विवाह संस्कार आदि तो कराते हैं, पर उनका धार्मिक ज्ञान बहुत स्वल्प है। भारत की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सुरीनाम में हिंदी प्रचार का अच्छा काम किया है।
वहां उसके 149 केंद्र हैं, जिनमें 45,000 व्यक्ति विभिन्न परीक्षाएं पास कर चुके हैं।
देहातों में छोटी मोटी निजी हिंदी पाठशालाएं भी चलती हैं। सुरीनाम में भागवत कथा का प्रचलन है। वहां प्रीतिभोजों की भी धूम रहती है। दिवाली दीपदान भारत की तरह ही होता है। होली पर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। रामलीला का अभिनय बहुत ही सुंदर ढंग से करने वाले कलाकार वहां गांव-गांव में मौजूद हैं। वहां भारतीयों की भाषा सरनामी है, जिसे हिंदू मुसलमान सभी बोलते समझते हैं।
इसे हिंदी भाषा का रूपांतर कहना चाहिए।
इसमें लिंग भेद नहीं होता। उस देश में जात पात की मान्यता तो है, पर इसके कारण रोटी बेटी के व्यवहार में विशेष अड़चन नहीं पड़ती।
हिंदुस्तानियों में 90,000 सनातन धर्मी, 30,000 आर्य समाजी, 30,000 मुसलमान और शेष में ईसाई तथा अन्य संप्रदायों के लोग हैं।
हिंदुओं के 50% मंदिर और मुसलमानों की 20% मस्जिदें यहाँ हैं। यहाँ के हाईस्कूलों में 4 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्पेनिश।
इनमें अधिकांश छात्र स्पेनिश लेते हैं, क्योंकि साउथ लेटिन अमरीका में ज्यादातर स्पेनिश ही चलती है। पिछली जनगणना के अनुसार सुरीनाम में 38% लोग हिंदुस्तानी बोलने वाले थे। गायना, दक्षिण अमेरिका। तब से 150 वर्ष पूर्व भारतीय श्रमिक इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा पहुंचाए गए।
कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में काम करके इन श्रमिकों ने उस देश की संपदा बढ़ाने में भारी योगदान दिया है। चीनी और चावल उत्पादन इस देश का प्रधान उद्योग है। भारतीयों ने इसे ऊंची स्थिति तक पहुंचाने में अथक परिश्रम किया है। इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में भारतीयों का गहरा हाथ है। सरकारी उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है।
पार्लियामेंट में उनका अच्छा प्रतिनिधित्व है।
वहां का संविधान भारत की नकल पर बना है।
राजधानी जॉर्जटाउन के राष्ट्रीय उद्यान में पमजीरो नेहरू और महात्मा गांधी की आदमकद मूर्तियां प्रमुख स्थान पर स्थापित हैं। दिवाली होली की वहां सरकारी छुट्टियां होती हैं। सनातन धर्म सभा के प्रधान श्री शेष नारायण यहां की विधानसभा के स्पीकर हैं।
गायना में, सुरीनाम में, वेस्ट इंडीज में भारतीयों का प्रवाह सन 1838 में आरंभ हुआ और 1917 तक चलता रहा। अब इस क्षेत्र में 10,00,000 के करीब भारतीय हैं, जिनमें हिंदू मुसलमान दोनों ही हैं। ठेके की शर्त के अनुसार वे 5 वर्ष के लिए ही वहां गए थे, पर उनमें से अधिकांश उसी क्षेत्र में स्थायी निवासी के रूप में बस गए। इन प्रवासियों के साथ साथ पंडित पुरोहित भी बड़ी संख्या में चले गए।
यद्यपि वे पढ़े लिखे तो कम थे, तो भी उन्होंने यजमान और यममानी को कायम रखा।
फलतः इन लोगों में अभी भी धार्मिक मान्यताएं मजबूती के साथ बनी हुई हैं।
इन पंडितों ने न केवल कथावार्ता, पूजा उपासना के कर्मकांडों का प्रचलन रखा, वरन हिंदी की रात्रि पाठशालाएं भी चलाईं।
समय समय पर भारत से कितने ही धर्म प्रचारक इस क्षेत्र में जाते रहे हैं और प्रवासियों की धर्म भावना को प्रोत्साहित करते रहे हैं। इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में इन प्रवासी भारतीयों ने भारी योगदान दिया है।
उनमें से कितने ही अच्छे व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा हर क्षेत्र में मूर्धन्य प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। भारतीयों की विशेष आदत फूट का इस क्षेत्र में भी साम्राज्य है, अन्यथा इतना बड़ा समुदाय वहां के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण वर्चस्व रख रहा होता।
गायना में भारतीय प्रायः देहाती क्षेत्र में बसे हुए हैं। महिलाओं में हिंदुस्तानी पोशाक और जेवर अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं।
ग्रामोफोन रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण एवं फिल्मों के माध्यम से उस क्षेत्र में अभी हिंदी का अच्छा प्रचलन है।
मंदिर यहाँ बड़ी संख्या में बने हैं।
महात्मा गांधी और राम, कृष्ण, हनुमान के चित्र यहाँ घर घर मिलेंगे। अब से 300 वर्ष पूर्व यूरोप के विभिन्न देशों के निवासी अमेरिका को रौंदते हुए इस क्षेत्र में भी घुस पड़े थे। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल विशेष रूप से और थोड़े थोड़े अन्य यूरोपीय देशवासी यहां पहुंचे और बस गए।
इन लोगों ने उसी क्षेत्र के वनवासियों को पकड़ा और भारत जैसे अन्य देशों से श्रमिकों को मंगाया, जो अभी भी वहां के निवासी बनकर स्थित हैं। वहां के प्रवासी भारतीय इसी प्रकार पहुंचे और बसे हैं। 100-150 वर्षों से वहां रह रहे हैं। नर नारियों ने यूरोपीय पोशाक ग्रहण कर ली है, फिर भी स्त्रियां नंगे सिर दिखाई नहीं पड़ेंगी, उनके सिर पर ओढ़नी का पल्ला होगा। यद्यपि यूरोपीय फ्राक जैसी पोशाक पहनती हैं, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी इनके दैनिक बोलचाल में काम आती है। भोजन भारतीय धन का पकाते और खाते हैं।
रामायण का प्रचलन है।
पुरोहित लोग भी बसे हैं। कथा, पुराण और भजन कीर्तन के धार्मिक समारोह होते रहते हैं। गायना भारत से 9000 मील दूर है। अब उसकी जनता में भारतीय 53% हैं, 33% यूरोपियन और 14% में आदिवासी, अफ्रीकी, चीनी आदि हैं।
यहाँ दो राजनैतिक पार्टियां हैं, एक पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, दूसरी प्रोग्रेसिव पार्टी।
पहली के हाथ में इन दिनों शासन सूत्र है, दूसरी विरोधी दल में है, जिसके नेता हैं भारतीय मूल के डॉक्टर शून्य छेदी जगन। सेना में 95% किक्यू कबीले के अफ्रीकी भरे पड़े हैं। बहुमत में होते हुए भी भारतीयों को शासन में उच्च पद नहीं के बराबर प्राप्त हैं। सरकार में भारतीयों की जिस प्रकार उपेक्षा हो रही है, उससे सभी न्यायप्रिय लोग दुखी हैं। गोरे और अफ्रीकी मिलकर शासन को अपने हाथ में लिए हुए हैं और बहुमत वाले भारतीय हर दृष्टि से शोषित उपेक्षित किए जा रहे हैं।
गायना का समुद्र तट वाला भू भाग ही रहने लायक है।
भीतरी भाग में सघन जंगल हैं।
वहां पर तीन बड़ी नदियां हैं, बरसीस, एसिकिवो और डैमटाटा।
इन्हीं नदियों के किनारे लोग पानी की सुविधा देखकर बसे हैं और किनारे किनारे आगे बढ़ते जाते हैं।
पनामा। पनामा नहर संसार के व्यापार का महत्वपूर्ण जलमार्ग बन जाने के कारण उस क्षेत्र में भारतीयों का पहुंचना कितने ही वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था, पर वहां की सरकार ने तरह तरह से प्रतिबंध लगाकर उनको वहां बसने से निरुत्साह कर दिया। केवल वे ही भारतीय वहां रह सके जिन्होंने अपने पास पर्याप्त पूंजी होने का प्रमाण देकर सरकार को संतुष्ट कर दिया।
अब उस क्षेत्र में लगभग 1000 भारतीय हैं, जो कोलोन, पनामा, क्रिस्टोल नगरों में बसे हुए हैं।
उनकी छोटी बड़ी 25 व्यापारी फर्म है, जो खुदरा, थोक एवं आयात निर्यात का काम करती हैं।
इन प्रवासियों का व्यवहार बहुत ही सौम्य तथा कानून पालक है। इतनी लंबी अवधि में कदाचित ही किसी भारतीय को कचहरी में उपस्थित होना पड़ा हो। राधास्वामी संप्रदाय के हिंदुओं में अधिक धार्मिकता पाई जाती है। उनके साप्ताहिक सत्संग चलते हैं, जिनमें अन्य संप्रदायों के लोग भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। पनामा निवासियों के साथ भारतवासियों के बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके साथ विवाह संबंध भी चल पड़े हैं।
ग्रेनिडा।
ग्रेनिडा में भारतीय लगभग 200 वर्ष से पहुंचते रहे हैं। अब उनकी संख्या 5000 के करीब है। उस पूरे क्षेत्र की आबादी 1,00,000 से भी कम है। इनमें से अधिकतर किसान, व्यापारी और दुकानदार हैं। कुछ दफ्तरों में काम करने वाले भी हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय पूर्वी भारतीय कहे जाते हैं। हिंदू मुसलमान की पोशाक, रहन सहन आदि का कोई भेद नहीं है। आपस में विवाह भी लोग बिना किसी सामाजिक बंधन के कर लेते हैं।
हिंदुओं की अपनी धार्मिक गतिविधियां शिथिल हो जाने से वे प्रायः प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए हैं। वे कैनेडियन चर्च के सदस्य बने हैं।
फिर भी उनमें भारतीय धर्म की पूजा पत्री होती है और कुछ रीति रिवाज पुराने धर्रे के भी चलते हैं। यहाँ के भारतीयों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी जब कभी उनके पास पैसा होता है तो वे उसे प्रीतिभोज उत्सव आयोजन मनाने में खुले हाथों खर्च कर डालते हैं, जिससे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं।
ग्रेनेडा द्वीप ट्रिनिडाड से 105 मील दूर है।
वहाँ 12 महीने हरियाली छाई रहती है और मौसम बड़ा सुहावना रहता है।
इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 133 वर्ग मील है।
यहाँ भारतीयों को पहुँचाया नहीं गया, वरन वे वहाँ जाकर स्वेच्छापूर्वक बसे हैं और उसके पूर्ण नागरिक हैं।
इंग्लैंड। सन 1969 की जनगणना में ब्रिटेन में 2,00,000 भारतीय थे। अब उनकी संख्या प्रायः 6 गुनी हो गई है।
इस बढ़ोतरी में पूर्वी युगांडा देश के खदेड़े हुए वे भारतीय भी हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने अपना नागरिक स्वीकार करके उदारतापूर्वक स्थान दिया है।
पंजाबी, बंगाली, गुजराती इनमें मुख्य हैं।
यूं सभी प्रांतों के लोग हैं। गोवा के ईसाइयों की भी बड़ी संख्या है। प्रवासी भारतीयों में 2/3 हिंदू और 1/3 मुसलमान हैं। कोवेंट्री, मिडलैंड, साउथ हाल, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, लिवरपूल, लीस्टर, ग्रेवसेंड आदि में भारतीयों की आबादी बहुत है। इनमें से अधिकतर लोग विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी करते हैं। कुछ छोटे मोटे व्यवसाय चलाते हैं। कितने ही शिल्पी एवं कारीगर भी हैं। ओवर टाइम के काम प्राप्त करने में उनकी अधिक दिलचस्पी रहती है, जबकि उस देश में श्रमिक सामान्य समय तक ही काम करके शेष समय को हंसने खेलने में लगाते हैं। काम तो आसानी से मिल जाता है, पर निवास की समस्या अभी भी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है। स्कॉटलैंड में पंजाबी भारतीय फेरी लगाकर माल बेचने में बहुत कुशल हैं। इसमें उन्होंने पैसा भी कमाया है। भारतीय पुरुष आमतौर से यूरोपीय पोशाक पहनते हैं, किंतु स्त्रियों ने लंबे समय तक वहां रहने पर भी अपने देश की पोशाक को ही अपनाए रखा है। भोजन संबंधी आदतें भी उन परिवारों में भारत जैसी ही हैं। इंग्लैंड में 2,00,000 हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहते हैं। बंगालियों की बड़ी संख्या है, इसके बाद पंजाबियों और गुजरातियों का नंबर आता है।
पंजाबी अधिक संगठित हैं।
गुजरातियों का एक अखबार गुजरात समाचार भी निकलता है। लंदन में रामकृष्ण मंदिर बंगाली संत प्रभुपाद जी द्वारा ट्राफलिगर स्क्वायर में बनाया गया है। यहाँ हरे कृष्ण के कीर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है। गौरांग संप्रदाय से उसका विशेष संबंध है।
रथयात्रा समारोह यहाँ विशेष उत्साह के मनाया जाता है।
लंदन के कृष्ण मंदिरों में 3 विशेष उल्लेखनीय हैं।
1. पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदू सेंटर के संरक्षण में चलने वाला ग्राफ्टन टेरेस क्षेत्र का सुदर्शन चक्र कृष्ण मंदिर। 2. पश्चिमी भाग में अवस्थित लीस्टर का राधा कृष्ण मंदिर। 3. पश्चिमोत्तर भाग में गोल्डर्स ग्रीन स्थान का कृष्ण मंदिर। सनातन धर्म मंदिर में भी रविवार शाम को गीता प्रवचन, बुधवार को योगाभ्यास, मंगल को ध्यान योग और शनिवार को सत्संग होता है।
जिन्हें जिस आयोजन में अधिक रुचि होती है वे उस दिन वहां पहुंचते हैं।
रविवार को उपस्थिति 400 तक पहुंच जाती है।
उस दिन प्रीतिभोज का क्रम भी चलता है और हवन भी होता है। इस संस्था की एक कीर्तन मंडली भी है, जो आमंत्रण पर हिंदू घरों में कीर्तन करने जाती है।
ऑस्ट्रेलिया।
सन 1837 में प्रवासी भारतीयों का एक जत्था श्रमिकों के रूप में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इसमें अधिकांश लोग पंजाब के थे। सन 1900 तक वे लोग उस देश की प्रगति में असाधारण योगदान देते रहे, पर 1901 में उन्हें वापस खदेड़ने और नयों को प्रवेश न मिलने के प्रतिबंध से प्रवासी भारतीयों की संख्या कम होती चली गई। यूं अभी भी वहां थोड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं और अच्छी हालत में हैं।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक सिंधी व्यापारी बदुलाह का अच्छा भेड़ पालन केंद्र है। मे 0 बस्यामल आसामल की अच्छी फर्म है, जिसकी शाखाएं मेलबोर्न और सिडनी में भी हैं। इसी प्रकार कुछ श्रमिक, शिल्पी, कारोबारी तथा विद्यार्थी भारतीय भी वहां मौजूद हैं।
न्यूजीलैंड।
सन 1913 के बाद अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह न्यूजीलैंड में भी भारतीय जनशक्ति को भेजा गया। उन्हें बसाया भी गया और नागरिकता भी दी गई, पर गोरे और काले के बीच भेदभाव करने वाले इम्प्लाइज लाइबिलिटी एक्ट, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट जैसे कानून बने।
जब श्रमिकों की आवश्यकता पूरी हो गई तो उन पर भी प्रतिबंध लगे और वापस भेजे गए। जिन दिनों भारतीय श्रमिक बड़ी संख्या में उस देश में पहुंचे तो उन दिनों उनकी संख्या ऑकलैंड में 57% और वेलिंगटन में 22% पहुंच गई थी।
दक्षिण द्वीप में वे 15% थे। वापिया, हेराकी, तोमारुनी, अकटियो, तोरगा, मालवारो, ओरती रोहांग आदि में उनकी अच्छी बस्तियां थीं।
उन्हें कृषि कार्य में कारखानों में लगाया गया,
जहां उन्होंने आशाजनक काम किया।
अब न्यूजीलैंड में भारतीयों की संख्या 6,100 है, जिनमें व्यापारी, छात्र, इंजीनियर तथा अन्य वर्ग के लोग सम्मिलित हैं।
पूर्वी अफ्रीका। केन्या, युगांडा और तंजानिया के तीनों क्षेत्र ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका कहलाते थे। अब इन्हें पूर्वी अफ्रीका कहते हैं।
कुछ समय पहले तंजानिया और जंजीबार अलग थे, अब उन दोनों को मिलाकर तंजानिया बन गया है।
इस क्षेत्र में 5 शताब्दी पूर्व अरब लोग पहुंचे। पीछे अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा दूसरे यूरोपियन देश वाले भी पहुंचने लगे। मुसलमानों ने अफ्रीकियों के साथ विवाह करके अपनी वंश वृद्धि की। यूरोपियन अपनी कुशलता और संपन्नता के कारण उस क्षेत्र के निवासियों को आकर्षित करते गए। पादरी लोगों ने इस क्षेत्र में ईसाईयत फैलाने में भी अच्छी सफलता पाई। भारतीय लोग अपनी निजी गतिविधियों तक ही सीमित रहने के कारण उस क्षेत्र में उतना प्रभाव उत्पन्न न कर सके, यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की।
उस क्षेत्र में भारतीयों का विशेष प्रवेश अंग्रेजों के रेलपथ बनाने वालों के रूप में हुआ था।
उन दिनों 32,000 कुली वहां पहुंचे थे, जो पीछे वहीं बस गए। उन्होंने क्रमशः व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिल्प, अध्यापन एवं सरकारी नौकरी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया और अपनी अच्छी स्थिति बनाई।
तंजानिया में उनकी संख्या करीब 15,000 जा पहुंची है।
दार ए सलाम में कुछ समय पहले उनकी अच्छी तूती बोलती थी। तब से 40 वर्ष पहले उन्हें सूदखोर और वहां की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने वाले बताकर लांछित किया गया।
इस क्षेत्र में शिक्षा संस्थाएं तो खुली, पर उन पर संप्रदाय की छाप लगने लगी।
जैसे आगाखानी बालकशाला, बोहराशाला, हिंदू फ्री कन्याशाला, इवान स्मिथ मदरसा आदि, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय आदि में उन लोगों ने अच्छी दिलचस्पी ली और अफ्रीकनों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाए।
इस तरह के प्रयास में हिंदू लोग पिछड़े रहे।
उनकी धार्मिक गतिविधियां पूजा पाठ तक, मंदिर आदि बनाने तक सीमित रहीं। धार्मिक कट्टरता बनाए रखने के कारण वे अफ्रीकी लोगों के साथ भी अधिक घुल मिल न सके। कुछ प्रभावशाली हिंदू केनिया की राजनीति में अच्छा हिस्सा लेते रहे।
इनमें एम वी पटेल, एस
जी अमीन जैसे कई मूर्धन्य व्यक्तियों के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे। पिछले दिनों उस क्षेत्र में भारतीयों की आबादी 1.5 लाख थी, जिसमें सिख संप्रदाय के 20,000, जैनी 12,000 और गोवा निवासी 8,000 भी सम्मिलित थे।
पूर्वी अफ्रीका में केनिया, युगांडा, तंजानिया ये 3 बड़े देश आते हैं, पर भारतीयों की अधिक आबादी केनिया में रही है।
पूर्वी अफ्रीका में भारत के गुजराती व्यापारी 13वीं सदी में ही जा पहुंचे थे। सन 1840 में मुल्तान सैयद ने अपनी राजधानी मुस्कात से हटाकर जंजीबार बनाई। वह अपने साथ इन भारतीय व्यापारियों को भी ले गया। उस समय बंदरगाह क्षेत्र में आधी आबादी भारतीयों की थी। यह सभी कच्छ, जामनगर क्षेत्र के थे। धीरे धीरे पूर्वी अफ्रीका में भारतीय मुसलमान भी बढ़े। शिया संप्रदाय की एक शाखा भी वहां पहुंची और आगाखानी संप्रदाय के खोजा लोग भी वहां जा बसे। खोजा लोग अपने धर्म गुरुओं की प्रेरणा से अधिक प्रगतिशील रहे।
वे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म कार्यों में लगाने का नियम पालते थे, इसीलिए उनकी कितनी ही उपयोगी संस्थाएं चलने लगीं। पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों में गुजराती भाषी हिंदू अधिक हैं।
वे व्यापारिक उद्देश्य से वहां पहुंचे हैं।
इनके बाद पंजाबियों का नंबर है।
सनातन धर्मी, आर्य समाजी, स्वामी नारायण पंथी आदि संप्रदायों में वे लोग बंटे हुए हैं।
उनके मंदिर एवं रीति रिवाज भी भारत की तरह ही बंटे और बिखरे हैं। केनिया में हीरजी बाबा की पिछले दिनों बहुत धूम थी। इनमें हरी पगड़ी वाले बाबा के कई हजार शिष्य हैं, जिनमें लोहानी, पटेल तथा अन्य गुजराती, कच्छी लोगों की संख्या ही अधिक है। भजन, कीर्तन, रामायण, कथा, प्रवचन, सत्संग आदि की उनके शिष्यों में धूम मची रहती है। केनिया, तंजानिया, युगांडा इन तीनों देशों में उनका प्रभाव है।
युगांडा में 2-3 वर्ष पूर्व 55,000 भारतीय रहते थे।
उनके करोड़ों रुपया मूल्य के बड़े बड़े कारखाने तथा व्यवसाय थे। पिछली शताब्दियों में उन्होंने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग के साथ उस देश की समृद्धि में भारी योगदान दिया था। उस देश के उन्मादी अधिनायक ईडी अमीन ने 3 महीने की अवधि में बंदूक की नोक पर इन भारतीयों को खदेड़कर बाहर कर दिया और उनकी संपत्ति लूट ली।
ऐसी नृशंसता संसार में अन्यत्र भी की गई हो, इसका उदाहरण शायद ही कहीं मिल सकेगा।
इन खदेड़े हुए भारतीयों में से हजारों को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में आश्रय मिला और शेष खाली हाथों भारत लौट आए। अब उस देश में मुश्किल से ही कुछ 100 भारतीय छोटे देहातों में बचे हैं।
सन 1948 की अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार केनिया में 90,500, युगांडा में 36,300, टंगानिका में 13,100 भारतीय थे।
यह संख्या गत कुछ वर्षों की अवधि तक लगातार बढ़ती रही है।
सन 1958 की रिपोर्ट के अनुसार केनिया में 175,000, युगांडा में 73,000, टंगानिका में 72,000 हो गई थी। पूर्वी अफ्रीका रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में भारतीयों के प्रति अफ्रीका की आर्थिक उन्नति में सहयोग देने के लिए गहरा आभार प्रकट किया गया था। तंजानिया।
तंजानिया के प्रधान शहर दारे ए सलाम में सन 1919 में स्थापित हिंदू मंडल तंजानिया के हिंदुओं की सबसे पुरानी संस्था है। छिटपुट अन्य हिंदू संस्थाओं ने उसे अपना केंद्रीय संगठन माना है।
न्यांजा स्ट्रीट पर उसका एक अच्छा अस्पताल, प्रसूति गृह एवं परिवार नियोजन केंद्र चलता है। बगमोयो स्ट्रीट पर उसने शमशान भूमि बनाई है। इसके अतिरिक्त अनेक धार्मिक सामाजिक उपयोगी कार्य होते रहते हैं। न्यांजा स्ट्रीट स्थित उसके असेंबली हॉल में समय समय पर पर्व त्योहार एवं सत्संग प्रवचन होते रहते हैं। संबंधित अन्य संस्थाएं भी अपने अपने स्कूल, पूजा मंदिर एवं अन्य उपयोगी सत्प्रवृत्तियों का संचालन करती रहती हैं। अफ्रीका।
अफ्रीका महाद्वीप के केनिया, युगांडा, तंजानिया, इथोपिया, मलावी, जाम्बिया, अदन, सूडान आदि देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैकड़ों वर्षों से बसे हैं, पर अब युगांडा से उनके निष्कासन के बाद इन सभी देशों में उसी तरह की हलचलें मच रही हैं और भीतर ही भीतर भय, आशंका, अनिश्चितता का वातावरण बन रहा है। वे वहां कब तक रह सकेंगे, इस संदर्भ में उन्हें निरंतर चिंतित रहना पड़ रहा है। भविष्य में वे कहां जाएं, कहां रहें और क्या करें, यह प्रश्न निरंतर परेशान करता रहता है। दक्षिण रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका में प्रकारांतर से गोरों का राज्य है।
वहां भी कठिनाई तो बहुत है, पर अनिश्चितता एवं आशंका का वातावरण नहीं है। मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका के ये तीन देश हैं जिनमें भारतीयों की कुछ स्थिति है, वन मलावी, टू जाम्बिया, थ्री रोडेशिया, तीनों ही स्वतंत्र हैं।
इस क्षेत्र में भारतीयों का प्रवेश अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व प्रधानतया ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रूप में हुआ था।
उनमें अधिकांश सिख थे।
नौकरी से निवृत्त होकर उनमें से अधिकांश वहीं बस गए और धीरे धीरे उनके संबंधी भी वहीं पहुंचने लगे।
वे कृषि, व्यवसाय, शिल्प तथा शिक्षा क्षेत्रों में काम करते रहे।
मलावी में रेल पथ बनाने और गाड़ियां चलाने का महत्वपूर्ण कार्य जिन एशियनों ने पूरा किया, उनमें भारतीय श्रमिकों और कारीगरों की संख्या अधिक थी।
उस रेलवे ने अपने यहां सन 1966 तक भारतीयों को अधिक उपयुक्त पाया और उत्साहपूर्वक भर्ती किया।
स्वल्पकालीन प्रवास के लिए इन देशों में जाने वालों के अतिरिक्त पीढ़ियों से उसी देश में रह रहे भारतीयों की भी बड़ी संख्या है। वे यूरोपियनों की तरह ही सुशिक्षित हैं, प्रतिभा में भी वे कम नहीं पड़ते, फिर भी उन्हें वह प्रोत्साहन और अवसर नहीं मिलता जो यूरोपियनों को प्राप्त है। इतना होने पर भी वे संपन्न हैं, अच्छी कारीगरियों में लगे हुए हैं। इसका कारण उनकी मितव्ययिता, परिश्रमशीलता एवं बुरी आदतों से बचे रहना है।
उनकी प्रत्येक पाई कठोर परिश्रम की कमाई हुई है।
गोरों में शराबखोरी, व्यभिचार और विलासिता आदि फिजूलखर्ची की जो आदतें होती हैं, वे भारतीयों में नहीं के बराबर है। जिम्बाब्वे की हिंद सोसाइटी के प्रेसिडेंट दाया भाई दो पीढ़ियों से इस देश में हैं। एशिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी इस्माइल भी उस देश के स्थायी नागरिक हैं। इन लोगों ने भारतीयों में पारस्परिक सहयोग बनाए रहने और उनके अधिकारों के लिए जागरूक रहने में यथासंभव आरंभ से ही प्रयत्न किया है।
मलावी।
मलावी में रहने वाले भारतीयों में से कम ने ही स्थायी नागरिकता स्वीकार की है। जो मलावी नागरिक बन चुके हैं उनकी संख्या 250 से भी कम है। इसका कारण वहां की सरकार का भारतीयों के प्रति अनुदार नीति बरतना भी है। यूं उस देश में इन दिनों 10,000 के करीब एशियाई लोग रहते हैं जिनमें मुख्यतः भारतीय मूल के लोग ही हैं। मलावी में तत्काल तो भारतीयों के लिए कोई भारी संकट नहीं, पर भीतर युगांडा जैसी आग वहां भी सुलग रही है।
वयोवृद्ध दूरदर्शी प्रेसिडेंट डॉक्टर
बांडा जब तक अपने पद पर हैं तब तक भारतीयों के निष्कासन का खतरा भले ही न हो, पर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनमें देर तक उनका पैर टिकाए रहना कठिन होगा।
जाम्बिया। आल जाम्बिया भजन सम्मेलन, काबवे भजन सम्मेलन, लुसाका हिंदू एसोसिएशन, प्रार्थना मंडल, आर्य समाज आदि हिंदू संस्थाओं द्वारा जाम्बिया में भारतीयों को संगठित रखने एवं उनमें धर्म भावनाएं जागृत रखने के लिए समय समय पर उत्सव आयोजन होते रहते हैं।
ऐसे ही प्रयत्नों ने उनमें पारस्परिक घनिष्ठता उत्पन्न करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है।
इथोपिया। इथोपिया द्वितीय महायुद्ध से पहले इटली के अधिकार में था।
महायुद्ध की अनेक प्रतिक्रियाओं में से एक इटली से आज़ादी प्राप्त करना भी है। उपनिवेशी जुआ को उतार फेंकने के लिए इथोपिया की जनता ने जो संघर्ष किया उसमें भारतीय सैनिकों ने भी अपना रक्त सम्मिलित किया था। भारत और इथोपिया के संबंध अच्छे हैं और कई सांस्कृतिक आदान प्रदान समय समय पर होते रहे हैं।
एक महिला मिशन भी उस देश में भेजा गया था जिसमें श्रीमती कमला देवी, श्रीमती अमूरस्वामी नाथन जैसी प्रसिद्ध समाज सेविकाएं भी थीं।
इथोपिया में इन दिनों 6,000 भारतीय हैं जिनमें विभिन्न विषयों की शिक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। वेतन भारत की अपेक्षा वहां कहीं अधिक दिया जाता है।
अद्दीस अबाबा में एक जलपान गृह भी उनका है।
कुछ भारतीय व्यापार कार्यों में भी संलग्न हैं। बिरला बंधुओं ने इथोपिया सरकार के सहयोग से उस देश में एक कपड़ा मिल खड़ी की है। उसमें 14,000 तकुए और 360 ऑटोमेटिक करके काम करते हैं। इस उत्पादन से उस देश की वस्त्र आवश्यकता का बहुत बड़ा भाग पूरा होता है।
अद्दीस अबाबा में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की ओर से हिंदी शाला, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी चलते हैं।
इथोपिया की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में यहाँ के भारतीय बहुत रस लेते हैं और मुक्त हस्त से सहायता करते हैं।
सोमालिया अफ्रीका के केनिया और इथोपिया देशों की सीमा से लगा हुआ समुद्र तटवर्ती एक देश है सोमालिया, जिसकी आबादी 40 लाख है।
भाषा सोमाली है। यहाँ के नागरिक नीग्रो नहीं वरन अरबों के वंशज हैं।
अफ्रीकी और अरब रक्त का सम्मिश्रण उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
यह एक इस्लामी राज्य है। कुरान पढ़ना शिक्षा क्रम में सम्मिलित है, इसलिए अरबी भाषा भी सोमाली के साथ ही पढ़ाई जाती है।
पहले यहाँ अंग्रेजों का राज्य था।
सन 1960 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली है।
अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय वहाँ व्यापारी के रूप में पहुँचे थे।
पिछले 2 महायुद्धों के समय से भारतीय सैनिक तथा अन्य कर्मचारी वहाँ रहते हैं, जिनमें से बहुत से सेवानिवृत्त होने के बाद वहीं बस गए। इनके बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने लगे। अभी भी वहाँ भारतीय व्यापारियों का व्यापार चल रहा है और सरकारी तथा दूसरे दफ्तरों में भारतीय कर्मचारी काम करते हैं।
युगांडा की तरह यहाँ भी अफ्रीकीकरण ने जोर पकड़ा है और वे धीरे धीरे अन्यत्र खिसकने लगे हैं। भारत सरकार ने उस देश को शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, स्टेनोग्राफर आदि के रूप में सहायता दी है।
उनके प्रयत्न से उस अल्प विकसित देश को प्रगति की ओर बढ़ने में बहुत सहायता मिल रही है। यहाँ भारतीयों को हिंदी या बनिया कहा जाता है।
दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का यह सुविख्यात क्षेत्र गोरों के हाथ में है।
भारतीय बहुत बड़ी संख्या में इस देश में बसे हुए हैं।
इस क्षेत्र को समुन्नत बनाने में उनका असाधारण श्रम लगा है,
किंतु गोरों ने भारतीयों तथा वहाँ के मूल निवासी काले लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिया है और उनके वे अधिकार छीन लिए हैं जो किसी देश में जन्मे और नागरिक बने व्यक्ति को मिलने चाहिए। अश्वेत जातियों पर उन्होंने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिससे वे उस देश के राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सदा पिछड़े हुए ही बन रहे।
इस अनीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने उस देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था।
उससे थोड़ी सी स्थिति तो सुधरी, पर प्रकारांतर में लगभग वैसे ही प्रतिबंध अभी भी लगे हुए हैं। गोरे काले का भेद हर क्षेत्र में एक अभिशाप के रूप में बना हुआ है। पिछड़ी हुई जातियों के धकेले जाने के बावजूद उस देश में भारतीय अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए हैं। उनकी आजीविका भी संतोषजनक है और शिक्षा, सभ्यता की दृष्टि से भी वे अपने आर्थिक परिश्रम के कारण अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। नागरिक अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत राष्ट्र संघ तक पहुँचाई गई। भारत ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की, पर इससे मदोन्मत्त गोरों का रवैया बदलने में कोई विशेष सहायता नहीं मिली है। इस देश में जगह जगह वर्णभेद की कटुता प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगे हुए हैं। केवल श्वेत लोगों के लिए, केवल यूरोपियनों के लिए के बोर्ड रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस जैसे जनसंकुल स्थानों पर लगे पाए जाते हैं।
इस रंगभेद को यूरोपियन लोग भी बुरी दृष्टि से देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के हजारों गोरे इसके कारण अपने देश को यह कहते हुए वापस चले गए कि इस घृणा भरे विषैले वातावरण में वे अपने बच्चों का पालन नहीं करना चाहते।
फिजी द्वीप समूह। फिजी द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है।
इसमें कुल मिलाकर 361 द्वीप हैं, जिनमें से 80 में मनुष्य रहते हैं, शेष वीरान हैं।
इनका क्षेत्रफल 7,435 वर्ग मील है।
इनमें 2 द्वीप हैं,
बीती लेबू और नाबुआ लेबू।
इनके अतिरिक्त कंदाबू और तक्यूनी भी बड़े टापू माने जा सकते हैं। राजधानी त्सुवा नगर है जो बीती लेबू द्वीप के दक्षिण के किनारे पर बसा है। सन 1866 में अंग्रेज तथा दूसरे लोग इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आकर बसने लगे थे। पीछे सन 1874 में फिजी पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ गया।
अब वह ब्रिटिश उपनिवेश है।
इस देश में गन्ना, केला और नारियल की विशेष उपज है।
कपास, काफी, मक्का, तंबाकू, अरंडी, चावल की भी वहाँ उपज है। रस्सी बांटने को केतकी भी यहाँ होती है।
इन्हीं चीजों का निर्यात भी होता है। पियो फिजी में वहाँ के मूल निवासी भी रहते हैं, पर उनकी जीवनचर्या अस्त व्यस्त और असंस्कृत होने के कारण अंग्रेज जब उस देश को नए सिरे से बसाने लगे तो उन मूल निवासियों से श्रमिकों का काम न लिया जा सका। भारत से श्रमिक बुलाने पड़े। अंग्रेजी राज्य भारत में भी था, इसलिए यहाँ से श्रमिकों की भर्ती करना कुछ कठिन न पड़ा।
गरीबी तो थी ही, भर्ती एजेंटों ने तरह तरह के बहकावे देकर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध किए।
पानी के जहाजों में भरकर वे फिजी पहुंचाए गए।
लगभग 60,000 भारतवासी वहां पहुंचे थे, जिनमें 65% पुरुष और 35% स्त्रियां थीं। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से उस देश को नए सिरे से बसाने और सुविकसित स्थिति तक पहुंचाने में जी जान से प्रयत्न किया।
उसी का परिणाम है कि आज यह द्वीप समूह बहुत ही सुसभ्य और समुन्नत बन चला है। बड़ी संख्या में संसार भर के पर्यटक वहां पहुंचते हैं और सर्वत्र बिखरी पड़ी सुषमा को देखकर आनंद विभोर होते हैं। आज उस देश में बसे भारतीय भी अच्छी स्थिति में हैं।
ये उन श्रमिकों की ही संतान हैं जो सन 1897 से लेकर 1916 तक वहां पहुंचते रहे थे।
5 वर्ष के शर्तबंदी के ठेके पर उन्हें वहां ले जाया गया था। उनमें से कुछ तो अवधि पूरी होने पर वापस लौट आए और कुछ वहीं स्थायी रूप से बस गए। भारत से 12,000 मील दूर 5.5 लाख की आबादी वाला यह द्वीप समूह अभी भी भारतीय संस्कृति के आलोक से जगमगाता है। यहाँ 3 लाख के लगभग भारतीय मूल के लोग रहते हैं। 2 लाख उस देश के मूल निवासी तथा शेष यूरोपियन, चीनी एवं दूसरे लोग हैं।
चीनी तथा नारियल का यहाँ विशेष उत्पादन है।
खनिजों में सोना प्रमुख है। राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। हिंदी तथा मल निवासियों की भाषा को भी मान्यता प्राप्त है।
राजनीतिक दृष्टि से यहाँ 2 पार्टियाँ हैं। 1 Alliance 2 National Federation। वर्तमान सरकार एलायंस पार्टी की है।
इसमें 3 मंत्री भारतीय भी हैं। यदि ये भारतीय संगठित होते तो द्वीप का शासनाधिकार उन्हीं के हाथ में होता, क्योंकि वे कुल आबादी में आधी से अधिक संख्या में हैं। फिजी में रहने वाले भारत मूल के लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब तथा दक्षिण भारत से जाकर बसे हैं। प्रांतीय भाषाओं को छोड़कर उन्होंने हिंदी बोलने का अभ्यास कर लिया है।
यहाँ पर 2 साप्ताहिक हिंदी पत्र भी निकलते हैं। फिजी का रेडियो सप्ताह में 75 घंटे हिंदी कार्यक्रम प्रसारित करता है। फिजी हिंदी महापरिषद ने भाषा प्रसार की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया है। कला क्षेत्र में एक रंगमंच नामक संगठन का उदय हुआ है, जिसने कितने ही सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए हैं।
रामलीलाओं के आयोजन में फिजी के मूल निवासी कोई बीती भी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं।
आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक भारतीय संपन्न है। हिंदी उनकी आम भाषा है।
राज्य भाषा अंग्रेजी है। आदिवासियों में से अधिकांश ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके हैं। भारतीयों और आदिवासियों के बीच की सांस्कृतिक खाई को पाटने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। भारतीय अनेक मत मतांतरों में विभक्त हैं।
हिंदुस्तान से प्रायः साधु संत और धर्म प्रचारक पहुंचते रहते हैं। इन दिनों साईं बाबा, बाल योगेश्वर, आनंद मार्ग आदि के एजेंट अपना अड्डा जमाते चले जाते हैं।
पुराने सनातन धर्मियों का धर्रा अपने ढंग से चलता रहता है।
कथा कीर्तन तक उनकी गतिविधियां सीमित हैं।
आर्य समाजी थोड़े हैं, पर उनका कार्य मजबूत है। फिजी निवासी भारतीयों की समस्याएं सुझाने तथा उन्हें समुचित प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर कितने ही मूर्धन्य भारतवासी वहां जाते रहे हैं तथा अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहे हैं।
उनमें श्री श्रीनिवास शास्त्री, पम0 हृदयनाथ कुंजरू, श्री विष्णुदेव, डॉ0 मणिलाल, अमीचंद, विद्यालंकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी वहां गई थी। यूरोपियन लोगों के रिवरेंड मैकमिलन, दीनबंधु एंड्रूज आदि के नाम ऐसे हैं जिन्हें फिजी निवासी भारतवासी सदा कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे।
श्री तोताराम सनाध्य वहां 21 वर्ष रहकर भारतीयों के लिए बहुत काम करते रहे थे।
सनातन धर्म सत्संग, रामायण मंडली, येलांडी नाबुआ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सुबह आर्य प्रतिनिधि सभा, कबीर विश्व मंदिर, निसीन आदि संस्थाओं द्वारा फिजी द्वीप में सांस्कृतिक चेतना जागृत रखने के लिए विविध प्रकार के सराहनीय आयोजन किए जाते रहते हैं।
J.W. बर्टन ने अपनी पुस्तक फिजी ऑफ टुडे में फिजी के आदिवासियों को भारतीयों के वंशज सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।
पाषाण प्रतिमाओं का पूजन, सर्पों को पवित्र मानना, भानजे को अधिक सम्मान देना जैसी कितनी ही प्रथाएं उनमें भारतीयों जैसी हैं।
साथ ही उनकी भाषा में संस्कृत मूलक भारतीय भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है।
फिजी की धार्मिक सहिष्णुता देखने ही योग्य है।
वहाँ कई देशों और कई धर्मों के लोग रहते हैं, पर इस भिन्नता के कारण उनकी मूल एकता में कोई अंतर नहीं आता।
होली, दिवाली, ईद और बड़ा दिन सब मिलजुल कर मनाते हैं।
गिरजाघरों और मस्जिदों में भी दिवाली के दिए जलते देखे जा सकते हैं। ईद, क्रिसमस, ईस्टर आदि त्योहारों पर हिंदू भी उसी उत्साह से भाग लेते हैं। यहाँ के मूल निवासी कभी जंगली और असभ्य माने जाते थे, पर वे अब सुसंस्कृत हो चले हैं और अपने देश की उन्नति में समुचित भाग ले रहे हैं।
फिजी को भारतीय, चीनी, यूरोपियन तथा फिजियन सभ्यता का सुंदर संगम कहा जा सकता है।
पिछले दिनों वहां बवांद्रा सरकार की स्थापना के बाद भारतीयों के हित सुरक्षित नहीं रहे, वे काफी संख्या में पलायन कर गए हैं।
हांगकांग। हांगकांग का क्षेत्रफल 391 वर्ग मील है और आबादी 33 लाख।
इनमें 32.5 लाख चीनी और बाकी 50,000 में दूसरे देशों के निवासी सम्मिलित हैं। भारतीय संख्या में तो अधिक नहीं है, पर उनका व्यावसायिक क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव है। सिंधी, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भारतीय यहाँ व्यापार कार्यों में संलग्न हैं। पुलिस में पंजाबी तथा गोरखे भी दिखाई पड़ते हैं।
चीन का समीपवर्ती हांगकांग जब ब्रिटिश उपनिवेश बना, तब वहां की जनसंख्या मात्र 24,000 थी। उनमें 360 भारतीय, 600 यूरोपियन और शेष स्थानीय लोग थे।
अब वहां की आबादी प्रायः 33 लाख है, इसमें भारतीयों की संख्या 8,200 है। हांगकांग में भारतीयों ने कुछ बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। डॉक्टर शून्य एच एन
मोदी ने वहां बहुत धन कमाया। उस धन को उन्होंने वहां एक मेडिकल कॉलेज बनाने में खर्च कर दिया। पीछे वह कॉलेज सन 1911 में विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया।
डॉक्टर शून्य मोदी का अनुकरण अन्य भारतीयों ने भी किया और उन्होंने रोग निदान केंद्र, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाए। हांगकांग में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कितने ही प्रवासी बसे हुए हैं, उनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। अन्यानियों में 5,000 पाकिस्तानी, 300 ऑस्ट्रेलिया के, 200 न्यूजीलैंड के, 300 लंका के तथा थोड़े थोड़े अन्य देशों के भी बसे हुए हैं। भारतीयों में करीब 1,000 सिख हैं,
100 हिंदू पंजाबी, 300 तामिल, 200 मलाई, 250 गुजराती और थोड़े थोड़े बंगाली, मराठी, कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, आंध्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि के लोग हैं।
पंजाबियों को सरकारी क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त है, उनके व्यापार में बहुत व्यवसाय आते हैं।
पंजाबी रेस्टोरेंट, बॉम्बे रेस्टोरेंट, गोलार्ड, ताजमहल, एम्बेसडर आदि कीमती होटल इन्हीं लोगों के हैं।
सिंधी लोग 1890 में वहां पहुंचे थे और प्रवास वर्षों में उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। आज हांगकांग के भारतीयों में सिंधी ही सबसे अधिक हैं।
कुछ वर्ष पहले उस देश के व्यापार में भारतीयों का 16% आधिपत्य था,
अब वह घटकर 4.5% रह गया है। वे दूसरों की प्रतिद्वंद्विता में पिछड़ते चले जा रहे हैं। हांगकांग ब्रिटेन को चीन द्वारा 99 वर्ष के पट्टे पर दिया हुआ है, जो 1997 में समाप्त हो जाएगा। तब इस 391 मील के बारे में दोनों देश पुनर्विचार करेंगे और उसका भविष्य निर्धारण करेंगे।
चीन के वर्तमान रुख को देखते हुए यह आशंका की जाती है कि वह शायद पट्टा आगे जारी न रहने दे अथवा शर्तें कड़ी कर दे।
ऐसी दशा में भारतीयों का वहां बने रहना कठिन हो जाएगा। हांगकांग में भारतीयों में 3 संगठन हैं।
वे व्यवसाय अथवा धर्म संप्रदाय के नाम पर गठित हैं। यदि देश में एकता मेल रहा होता तो भारतीयों की संगठित शक्ति के दर्शन होते। जापान।
भारत के अतिरिक्त संसार में केवल जापान ही एक ऐसा देश है जिसके छात्र बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत पढ़ते हैं। आरंभिक ज्ञान वालों की संख्या तो काफी बड़ी है।
उस समय में स्थापित जापानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज इन दोनों धर्मों के सार तत्वों को जापानी जनता तक पहुंचाने में संलग्न है।
एक नई संस्था कल्चरल रिसर्च याकोहामा ने अपने शिक्षण क्रम में इंडोलॉजी को सम्मिलित किया है और भारतीय दर्शन शास्त्र में जापानियों की रुचि बढ़ाई है।
फिलीपाइंस।
फिलीपाइंस द्वीप समूह में छोटे बड़े 7,083 द्वीप हैं।
इनमें 466 तो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ही हैं। 6,606 मध्यम क्षेत्रफल के हैं।
9 ऐसे हैं जिनका विस्तार 2,500 किलोमीटर है। 2 द्वीप बड़े हैं,
यूजिन -105,000 वर्ग किलोमीटर, मिडानव -95,000 वर्ग किलोमीटर। समस्त द्वीप समूह का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। आबादी प्रायः 2,25,00,000 है। इन द्वीपों पर पिछले दिनों स्पेन, अमेरिका एवं जापान का अधिकार रहा है। अब वह क्षेत्र स्वतंत्र है।
ईसाई, मुसलमानों के अतिरिक्त यहाँ हिंदू धर्मानुयायी भी हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत से संबंध बहुत दिनों तक टूटा रहने के कारण उनकी मूर्ति पूजा भारत से मिलती जुलती होते हुए भी अपने धर्म की अनोखी ही है।
रीत रिवाज भी विचित्र है।
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हिंदेशिया कई गणतंत्रों में विभक्त है।
1 जावा, 2 सुमात्रा, 3 बोनियो, 4 सेलिवीज, 5 बाली, 6 मोलक का द्वीप समूह। 1 जावा की आबादी 5 करोड़, क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है। 2 सुमात्रा की आबादी 1.5 करोड़, क्षेत्रफल 4,25,000 वर्ग किलोमीटर। 3 बोनियो की आबादी 4,10,000, क्षेत्रफल 6,08,000 वर्ग किलोमीटर। 4 सेलिवीज की आबादी 6,500,000, क्षेत्रफल 1,88,000 वर्ग किलोमीटर। 5 वाली की आबादी 2,500,000, क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर। 6 मुलक का द्वीप समूह में कुछ द्वीप निर्जन, कुछ बिरल आबादी वाले आदिवासियों के हैं।
इनमें चंदन, काली मिर्च तथा दूसरे मसाले पैदा होते हैं।
इंडोनेशिया क्षेत्र में अब से 2,000 वर्ष पूर्व भारतीयों का पदार्पण हुआ था।
अब भी इस क्षेत्र में जावा और सुमात्रा क्षेत्र में भारतीयों की अच्छी संख्या विद्यमान है।
इनमें दक्षिण भारत के चेट्टियार, मुदालिया, मद्रासी, सिंधी, सिख, गुजराती और मुसलमान लोग हैं।
इस क्षेत्र में 60% लोग भारतीय मूल के हैं। इन लोगों ने उसी क्षेत्र की महिलाओं से विवाह कर लिए हैं। वे एक प्रकार से स्थायी रूप में वहीं की सभ्यता में घुल मिल गए हैं और अपने आप को वहां का स्थिर नागरिक मानते हैं। भारत के प्रति उनकी श्रद्धा तो बहुत है, पर लौटकर वहां बसने की बात नहीं सोचते। भारतीयों और इंडोनेशियनों की सम्मिलित नस्ल पेरानाकंस कहलाती है, जिसकी संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र के सिंधी लोग अधिक धनी हैं।
अन्य प्रवासियों में कृषक, श्रमिक, गाड़ीवान, नाई, ठेकेदार, सुनार, साहूकार, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी आदि हैं।
इस्लाम धर्म का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, पर हिंदू मुसलमानों का जैसा विद्वेष भारत में है वैसा वहां नहीं है। सब लोग प्रेमपूर्वक रहते हैं। धर्म की तरह नस्ल झंझट भी वहां नहीं है। उस क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ जकातो भारतीयों की प्रभावशाली संस्था है। देहाती क्षेत्र में कितने ही मंदिर हैं। ब्राह्मणों की बस्तियों पैजैन कतलानी में हैं, जो इस क्षेत्र में 40 के लगभग हैं।
30 बेदुलू हैं, उन्हें अन्यान्य भारतीयों की सम्मिलित बस्तियां तथा मंदिर क्षेत्र कह सकते हैं। इंडोनेशिया की हिंदू धर्म परिषद की ओर से एक हिंदू धर्म सामाजिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।
वहां की हिंदू सहायता समिति एक पाठशाला चलाती है, जिसमें हिंदी, संस्कृत तथा हिंदू धर्म की आवश्यक जानकारियों की शिक्षा दी जाती है।
हिंदचीन। इंडो चाइना हिंदचीन द्वितीय महायुद्ध से पूर्व फ्रांसीसी साम्राज्य का उपनिवेश था। उसमें 5 प्रदेश थे, 1 कंबोडिया, 2 लाओस, 3 कोचीन, 4 अनाम, 5 टोंगकिंग। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन्हें संगठित किया गया, जिससे वे 3 ही रह गए।
1 कंबोडिया, 2 लाओस, 3 कोचीन अनाम तथा टोंगकिंग का नाम वियतनाम रखा गया।
कंबोडिया की आबादी 55 लाख और क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लाओस की आबादी 2 लाख और क्षेत्रफल 2,37,000 वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम अब उत्तर वियतनाम साम्यवादी, दक्षिण वियतनाम प्रजातंत्रीय दो भागों में विभक्त है। थाईलैंड।
पूर्वकाल का स्याम अब सन 1939 में थाईलैंड बन गया है। सादगी से बने बौद्ध मंदिर वागोड़ा कहलाते हैं और शानदार हिंदू मंदिर बाट कहलाते हैं। वे पशु मांस नहीं खाते, परंतु मछली को प्रायः सभी खाते हैं, क्योंकि मछली पानी से निकलने पर स्वतः मर जाती है, किसी को मारनी नहीं पड़ती। इस तर्क के अनुसार वे मछली खाने में हिंसा नहीं मानते।
वर्तमान शताब्दी में स्वामी सत्यानंद पुरी थाईलैंड जाकर बसे थे।
उन्होंने भारतीय संस्कृति का थाई देश में प्रसार करने के लिए बैंकॉक में थाई भारत संस्कृति आश्रम की स्थापना की।
चुलालोकोन विश्वविद्यालय में उन्हें संस्कृत अध्यापन का भी कार्य मिला।
स्वामी जी उस देश की जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
उन्होंने कई ग्रंथ लिखे।
थाईलैंड में अधिकांश भारतीय दक्षिण भारत के हैं। उनकी संख्या 20,000 के लगभग है।
वस्त्र व्यवसाय इनका प्रधान धंधा है।
मद्रास के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा यहाँ है।
कंबोडिया।
कंबोडिया के भारतीयों में अधिकांश सिंधी हैं। इसके बाद उत्तर भारत के लोगों का नंबर आता है। बैंकॉक नगर में भारतीय अधिक हैं।
उनका व्यवसाय वस्त्र विक्रय है।
वे उस देश में अन्यत्र भी बसे हैं और अन्यान्य व्यवसाय भी करते हैं।
वियतनाम।
वियतनाम में भारतीयों की संख्या 8,000 है। ये मुख्यतः सैगोन में घनीभूत हैं।
वे हिंदू, बौद्ध और मुसलमान धर्मानुयायी हैं।
इनमें से 5,000 ऐसे होंगे जिनमें वियतनामी रक्त का मिश्रण है। भारतीयों ने उस देश में मूल निवासियों के साथ अपने विवाह संबंध का मार्ग आरंभ से ही खुला रखा है। सैगोन एवं कोलोन में 2 मस्जिदें, 2 गुरुद्वारे तथा हिंदू मंदिर हैं।
एक देवी मरियम्मा का है। ईसाई धर्म की पूज्य मरियम का हिंदू धर्म के साथ यह अद्भुत तालमेल है।
यहाँ के अधिकांश भारतीय कपड़े का खुदरा तथा थोक व्यापार करते हैं। कितनों की अन्य बड़ी दुकानें हैं। कई बड़े जमींदार हैं। व्यापारी प्रकृति होने के कारण वे छोटे बड़े व्यवसायों में लगे हुए हैं। कितनी ही लाभदायक एजेंसियां वे लोग चलाते हैं। भारत के मूल वियतनामियों को यह शिकायत नहीं है कि नस्ल के आधार पर सरकार अथवा जनता किसी प्रकार का भेदभाव करती है।
बाली।
पिछले दिनों भारतीय सभ्यता का केंद्र इंडोनेशिया से हटकर बाली द्वीप में आ गया। इस देश में हिंदू और बौद्ध धर्म का सराहनीय समन्वय हुआ है। यह छोटा सा द्वीप हजारों मंदिरों से पटा पड़ा है।
इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, राम आदि की मूर्तियों का बाहुल्य है। बौद्ध प्रतिमाएं उसी सम्मान से पूजी जाती हैं।
बौद्ध लोग हिंदू देवताओं की भी उपासना करते हैं। इस देश के भारतीयों में अभी भी 4 वर्णों का प्रचलन है, पर उसमें ऊंच नीच और कट्टरता का नाम नहीं है। कोई भी वर्ण किसी भी व्यवसाय को बिना किसी भेदभाव के कर सकता है।
मलेशिया।
सन 1931 के सर्वेक्षण में मलेशिया का व्यापार 10% भारतीयों के हाथ में था।
कृषि, वन विभाग, मत्स्योद्योग जैसे कार्य तो 53% उन्हीं के हाथ में थे।
उस देश की कुल संख्या में वे 11% थे। इसमें हिंदू और मुसलमान धर्मावलंबी दोनों ही सम्मिलित हैं।
द्वितीय महायुद्ध के बाद मलाया में भी विदेशियों को बाहर निकालने की मुहिम चली, तदनुसार अस्थायी नागरिकता वाले भारतीयों को भी वहां से वापस लौटना पड़ा। सन 1950 तक उनका जो वर्चस्व था उसमें अब काफी कमी आ गई है।
चीनियों को जो सुविधाएं वहां हैं वे भारतीयों को नहीं हैं।
अस्तु, उनकी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है।
मलेशिया में अभी भी 9.5 लाख भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं। उनकी संख्या 9% है। इनमें से आधे सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करते हैं।
एक तिहाई व्यापारी हैं। कुछ लोग श्रमजीवी, शिल्पी, वकील, डॉक्टर आदि हैं।
मलेशिया के निवासियों में 3 घटक हैं। एक उस क्षेत्र के मूल निवासी, 2 चीनी मूल के, 3 भारतीय मूल के। भारतीयों में अधिकांश दक्षिणी भारत के तमिल भाषी हैं। इनमें कुछ लोग पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल आदि प्रांतों से पहुंचे हुए भी हैं।
रेलवे, पुलिस, सुरक्षा विभाग आदि में वे सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में भी लगे हुए पाए जाएंगे।
सिंगापुर की प्रत्यक्ष उन्नति में और पेनांग की अप्रत्यक्ष उन्नति में जिन भारतीयों का प्रमुख हाथ रहा है उनमें सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती और बिहारी मुख्य थे। सिंगापुर विश्व के विस्तृत बंदरगाहों में से एक है।
इन दिनों सिंगापुर की आबादी 25 लाख है, जिनमें 2 लाख भारतीय हैं। अफगानिस्तान।
कहा जाता है कि अफगानिस्तान आर्यों का मूल उद्गम स्थान है, पर पिछले दिनों इस्लाम का दबदबा वहां रहने से अब इस बात के प्रमाण ढूंढ सकना कठिन है कि क्या यही आर्यों का मूल उद्गम स्थान था। इतने पर भी वहां हिंदू धर्म के अवशेष एवं प्रमाण बहुत हैं। काबुल का विशाल माता मंदिर तब का बना है जब उस देश में इस्लाम का प्रसार नहीं हुआ था। ठाकुर जी का मंदिर, आसामई के मंदिर भी ऐसे ही हैं।
शिव मंदिर नगर के बीचों बीच है। कई गुरुद्वारे हैं जिनके साथ धार्मिक स्थल जुड़े हैं। जलालाबाद और कंधार का शिव मंदिर, गजनी के समीप दुर्गा मंदिर बहुत विख्यात हैं।
इनमें हिंदू ही नहीं मुसलमान भी दर्शन करने आते हैं। लोहगार का झरना, जिसे बड़ गंगा कहते हैं, हिंदू धर्मानुयायियों के लिए भारत की गंगा की तरह पवित्र है। यहाँ पर्वों पर स्नान करने के लिए बहुत सारी भीड़ें एकत्रित होती हैं। जटाशंकर, शेर भवानी, गुप्त गंगा, अन्य ऐसे कई स्थान हैं जो तीर्थों की तरह प्रयुक्त होते हैं।
शिवाकी, बुद्धघाट, लोंगर, शंकर दर्रा आदि स्थान प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंधित हैं।
हगधा और गजनी की खुदाई से कई शिव मंदिरों और बौद्ध मंदिरों के खंडहर मिले हैं।
वैशाखी, दिवाली, शिवरात्रि, वसंत पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं द्वारा मनाई जाती हैं।
गुरुद्वारे में गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं की जयंतियां मनाई जाती हैं। वर्ष में एक बार बादशाह का चाचा इन उत्सवों में भाग लेने के लिए आते हैं। हिंदुओं की ओर से उनका स्वागत किया जाता है। अफगानिस्तान में हिंदुओं की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति भारत जैसी ही है।
वे संयुक्त परिवार पद्धति का पालन करते हैं।
तलाक उनमें नहीं है। धार्मिक रीति रिवाजों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक कट्टर हैं।
शिक्षा की सुविधाएं होते हुए भी देहाती क्षेत्र में बिखरे हुए हिंदू उसमें कम ही रुचि लेते हैं। खेती, बागवानी, व्यापार, कारखाने वे चलाते हैं।
धनियों की संख्या कम है। जो है उन्होंने धन कारखानों में लगा रखा है। अमीरों जैसी सुविधा भोगने वाले हिंदू कम ही हैं। सरकार द्वारा भारत से बुलाए गए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तथा प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बड़े नगरों में रहते हैं। वहां की लोकसभा में एक हिंदू सदस्य भी है।
सन 1963 में काबुल में अफगान हिंदू सहायता समिति की स्थापना हुई थी,
जिसके द्वारा हिंदू धर्म की सांस्कृतिक जानकारियां देने तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। उसने एक असीमिया स्कूल भी खोला है जिसमें हिंदी पढ़ाने तथा धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था है। अफगानिस्तान में इन दिनों हिंदुओं की संख्या लगभग 25,000 है। वे विशेषतया बड़े नगरों में रहते हैं।
काबुल, कंधार, जलालाबाद, गजनी, खानाबाद, कुंदूज, तालुकान, लगमान और सुल्तानपुर में उनकी अच्छी बस्तियां हैं। शिक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान के भारतीय बहुत पिछड़े हुए हैं।
हाईस्कूल पास कर लिया तो बहुत, ग्रेजुएट तो बहुत ही कम है। जो है वे भी किसी बुद्धिजीवी क्षेत्र में जाने की अपेक्षा अपने पैतृक व्यवसाय में ही संलग्न है। लड़कियों में तो हाईस्कूल पास उंगलियों पर गिनने जितनी ही मिलेगी। अफगानिस्तान और ईरान धर्म से मुसलमान हैं, पर उनकी नस्ल अरब नहीं आर्य है। इतिहासकारों ने इन्हें आर्यन देश लिखा है। अफगानों का दावा है कि वेदों का उदय उन्हीं के देश में हुआ था। ईरान के शाह के नाम के साथ जो पदवियां जुड़ी हुई हैं उनमें एक आर्य मिहिर भी है। उसका अर्थ होता है आर्य वंश के सूर्य। इराक के कुर्द जाति के लोग अपने आप को भारतीयों का सजातीय मानते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पीर रत्ननाथ जी की दरगाह को नया रूप दिया जा रहा है।
उसमें एक विशाल सत्संग भवन, शिवालय, रामायण कक्ष बनाने का प्रयत्न चल रहा है। तब से 550 वर्ष पूर्व भारत के एक संत रत्ननाथ जी उस देश में धर्म प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, उसी को दरगाह कहते थे।
उस देश के हिंदुओं में इन पीर संत के प्रति बहुत आस्था है। उनके पुराने स्थान को नया रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार आसामई के मंदिर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भरता है, अब एक कृष्ण मंदिर बनाने की योजना है।
कुवैत। कुवैत में गुजराती समाज, इंडियन आर्ट सर्किल, गीता सोसाइटी, तमिल संगम आदि संस्थाओं द्वारा भारतीय परंपरा से संबंधित नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रवचनों का आयोजन होता रहता है।
सालमियाह में एक हिंदुस्तानी स्कूल है।
उसकी शाखा फाहाहाल गांव में भी है।
इनमें भारतीय छात्रों के भारत में चलने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों की शिक्षा देने की व्यवस्था है। कुवैत में 12,000 के करीब भारतीय हैं। इनमें मुख्यतः केरल तथा गोवा के हैं। गुजराती व्यापार करते हैं। सिखों की संख्या भी 200 के करीब है। दक्षिण के लोग सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में हैं। कुछ अच्छे भारतीय डॉक्टर भी हैं। इनमें से डॉक्टर शून्य प्रीतम सिंह साहनी ने अच्छा नाम कमाया है।
व्यापारियों में उत्तम चंद कोहली, नारायण सबरवाल, एस शर्मा और सेठी ब्रादर्स के नाम अग्रणी हैं।
कुवैत निवासियों के साथ मिलकर व्यापार कर सकने के कानून के कारण भारतीय व्यापारियों को भी साझेदारी में ही काम करना पड़ता है। कुवैत में नागरिकता प्राप्त करना किसी विदेशी के लिए प्रायः असंभव है।
अरब देशों का व्यक्ति 15 वर्ष और अन्य देशों का 30 वर्ष तक लगातार वहां रहने के बाद ही नागरिक बनने की अर्जी दे सकता है।
इस प्रतिबंध के कारण एक भी भारतीय वहां का नागरिक नहीं है। सबसे पुराने निवासी रिटायर्ड सूबेदार मेजर गुरुमुख सिंह सेठी हैं, पर वे भी नागरिक नहीं हैं। नियत अवधि पूरी करके भारतीयों को वहां से वापस लौटना पड़ता है।
दीपावली उत्सव सभी भारतीय मिलजुलकर मनाते हैं। हिंदुस्तान से कोई 3,000 किलोमीटर दूर कुवैत की आबादी 2.25 लाख है, लेकिन वार्षिक सरकारी बजट 90 करोड़ रुपया है। इस देश को तेल से इतनी आमदनी है कि एक वर्ष की कमाई 10 वर्ष का सरकारी खर्च चला सकती है। यहाँ अनाज, सब्जी, दूध, चीनी, कपड़े जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी पैदा नहीं होती।
प्रायः हर चीज बाहर से मंगानी पड़ती है। सऊदी अरब के पूर्वी किनारे पर यह शेख शासित एक छोटा सा राज्य है जो सोना उगलता है। यूं अभी वहां रेल, ट्राम, नहर, तालाब, कुएं, बगीचे आदि नहीं हैं, फिर भी समुद्री घाट और हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है।
बिजली और टेलीफोन की घर घर सुविधा है। हेजाज।
हज करने वाले यात्रियों में से बहुत से यहां बस गए हैं। वह कोई कार्य व्यवसाय नहीं करते, प्रायः संचित पूंजी से ही गुजारा करते हैं अथवा धर्मस्थानों से ही भोजन पाते हैं।
इनमें अधिकांश वृद्ध मुसलमान होते हैं। पिछले दिनों उनकी संख्या 4,000 थी।
जिद्दा में 300 भारतीय हैं। वे छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं। कुछ क्लर्क भी हैं। मदीना में कुछ मुसलमान भारतीय व्यापारी हैं। मस्कत में 4,500 भारतीय हैं, कुछ व्यापारी, कुछ सरकारी नौकरियों में और कुछ डॉक्टर, नर्स हैं।
यहाँ के भारतीय अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भलमनसाहत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रामाणिकता पर कोई अविश्वास नहीं करता। इराक।
इराक में करीब 200 भारतीय परिवार रहते हैं, जो बगदाद, बसरा, मोसल, सुलेमानिया में बसे हुए हैं। वहां की सरकार ने बहुत से शिक्षक वहां बुलाए हैं। बगदाद में भारतीयों के दर्जनों धोबी गृह हैं।
यह लांड्रियां प्रतिष्ठा प्राप्त हैं तथा संचालकों को अच्छी आजीविका देती हैं।
बगदाद का इंडियन एसोसिएशन अक्सर प्रीतिभोजों, पिकनिकों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। बगदाद में एक सिख गुरुद्वारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 1520 में गुरु नानक वहां पहुंचे थे और सूफी संत वहलोल से सत्संग किया था। उसी घटना की स्मृति में यह गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारे पर इसी विवरण का एक शिलालेख लगा हुआ है।
बेहरीन।
बेहरीन की तेल कंपनी में कितने ही भारतीय काम करते हैं।
टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, डॉक्टर, नर्सें यहां प्रायः भारत के केरल प्रांत से आए हैं।
सिंधी तथा गुजरातियों का व्यापार है। सरकारी कानून यह है कि कोई विदेशी यहां केवल स्थानीय नागरिकों की साझेदारी में ही कोई व्यापार कर सकता है।
भारतीयों का समस्त व्यापार यहां भागीदारी के नियमानुसार ही चलता है।
वैसे कितने ही ठेकेदार, कारीगर, श्रमिक अपना काम स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। यहां एक भारतीय स्कूल है जिसमें अंग्रेजी तथा हिंदी के माध्यम से 8वें दर्जे तक की शिक्षा दी जाती है।
स्कूल का नाम है इंडियन सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल। बेहरीन में भारतीयों के कई संगठन हैं, इंडियन एसोसिएशन, केरल समाजम, तमिल संघम, भारतीय मित्र मंडल, कर्नाटक क्लब, यंग गोवंस क्लब, बेहरीन स्पोर्ट्स क्लब।
यहाँ के 4 सिनेमाघरों में हिंदी फिल्में दिखाने का भी प्रबंध है। हिंदुओं का एक मंदिर भी है।
दिवाली, पोंगल, ओणम पर्व बड़ी सजधज के साथ मनाए जाते हैं।
सन 72 से यहाँ गीता यज्ञ के नाम